शांति, क्या ही मनोरम दृश्य है हमारे इस विराट मंच पर। आज के सम्माननीय अतिथि और हमारी आदरणीय दादियां पहुंच चुकी है। एक बार जी भर कर के करतल ध्वनि से आपका हम अभिनंदन करेंगे। आपकी तालियां रुक क्यों गईं? कार्यक्रम का आरंभ अपने प्यारे पिता शिव बाबा का आवाहन करते हुए 2 मिनट साइलेंस से करेंगे। बहुत सुंदर गीत बजेगा और उस गीत के अर्थ स्वरूप हम स्थित होंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप अपना अपना स्थान प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक ग्रहण कर लें। आप करतल ध्वनि कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम वह ईश्वर प्यारे बाबा शिव बाबा और उनके साकार माध्यम जिनको शिव बाबा ने साधारण मानव से प्रजापिता ब्रह्मा बना दिया, उनकी स्मृति में 2 मिनट के लिए हम सब मेडिटेशन में बैठेंगे और कार्यक्रम का सफलता का आवाहन करते अपने शुभ संकल्प इस कार्यक्रम को प्रदान करेंगे। गीत बजेगा और आप सबसे निवेदन है कृपया 2 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएं। व्यापी संस्था जिसे फैमिली इंस्टीट्यूशन कहें, जिसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहें, जिसे चरित्र निर्माण करने का इंस्टीट्यूशन कहें, उसके विश्व स्तर पर सेवा करते हुए 80 वर्षों की यात्रा जो संपन्न हुई उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 80 वर्ष का समय कम नहीं होता। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, इसे हम 80 इयर्स ओल्ड कहें या 80 इयर्स यंग कहें? जो कहते 80 इयर्स यंग वो थोड़ा हाथ तो उठा दे। ओल्ड इज गोल्ड भी तो कहा जाता है, दोनों ही बातें हैं। ये ओल्ड भी है और 80 इयर्स यंग भी है। ओल्ड जबकि अपने प्रिंसिपल्स, अपनी शिक्षाएं, अपनी फिलॉसफी जो सारे विश्व स्तर पर फैलाई, समझ में आता है कि इसने कई टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स को जो अपनाया वे काम आज भी कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और इसकी दी हुई शिक्षाएं, फिलॉसफी को हम आज भी स्वीकार करते हुए अपना सकते हैं, ये इस बात का प्रमाण है। प्रायः कोई चीज 80 वर्ष तक चलती है तो उसमें एक स्ट्रेंथ अपने आप में समझ में आती है। और दूसरा पक्ष एक और भी है, कहते हैं जब कोई चीज पुरानी हो जाती है धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होता है, लेकिन ये ईश्वरी विश्वविद्यालय अपने प्रकार का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो डाउनफॉल के जो सिंबल्स बताए जाते हैं कि फाउंडर के जाने के 2-3 पीढ़ी के पश्चात पद पर, पोजीशन पर, प्रॉपर्टी पर, अन्य बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, वो चीज इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में नहीं है। और इसका कारण ये कि ये उस पिता के द्वारा स्थापित है जो हम सबका पिता है। और दूसरी बात, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं परंतु आध्यात्मिक है, जिसमें सब प्रकार के लोग, सब प्रकार की बैकग्राउंड से, सब रिलीजन से आकर के लाभान्वित होते हैं। दूसरी एक प्रमुख बात है और वो ये है कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का सारा संचालन और निर्देशन शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा माताओं और बहनों को सौंपा। और आज सारे विश्व में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसका टोटल संचालन माताओं बहनों के द्वारा है, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसके 137 देशों में केंद्र चल रहे हैं। आपके सामने ज्वलंत एग्जाम्पल आदरणीय दादी जानकी बैठी है, जो 101 इयर्स ओल्ड है, 101 इयर्स यंग, और आज दादी हमारा निर्देशन, हमें डायरेक्शन और हमारी आध्यात्मिक रूप से पालना सतत रूप से कर रही हैं। एक बार ऐसे मिसाल के लिए हम भारतवासी कितना गर्व और गौरव रखते हैं, उनके लिए हम ताली बजाएंगे। तीसरी बात, यह कोई लौकिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अलौकिक है, रूहानी है। और इसकी जो फाउंडेशन है आध्यात्मिकता के मूल्यों के आधार पर, उतनी ही मजबूत है जिस रीति से वृक्ष की जड़ सारे वृक्ष की आधार मूर्त होती है। उसी रीति से शिव बाबा ने हम आत्माओं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनाया, ये वरदान दिया। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन दिनों दिन निरंतर प्रगति करती जा रही है, दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ती जा रही है। अधिक समय ना लेकर आइए, ऐसा मंच आज जिसकी खुशी में हमारे मध्य भारत के महानुभाव उपस्थित हुए, हम सब एक मधुर वाणी ग्रुप के द्वारा स्वागत गान सुनेंगे. ओके, साइमल्टेनियसली इट कैन बी डन. और इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगी अपनी आदरणीय बहनों से कि आप बैचेस और बुकेस के द्वारा हमारे माननीय मंच का अभिनंदन भी करेंगे. श्री एल के आडवाणी. आप ताली भरपूर रीत से बजाएंगे अपने देश के सीनियर स्टेट्समैन डॉक्टर पी जे कुरियन, डेप्टी चेयरमैन राज्यसभा. आपकी तालियों का जो प्रवाह है वो बना रहे तो अच्छा है. आज खुशी का अवसर है. मधुर वाणी ग्रुप
भगवान आ गए हैं.
संदेश दिया कि दुनिया नई बनाने भगवान आ गए हैं। और सच है, अगर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो वो परमात्मा के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि वे ही रचयिता हैं और रचयिता अपनी रचना को खूब जानते हैं। कैसे होगा, कहां होगा, किस विधि होगा, ये परमात्मा ही बता सकते हैं। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम भी रखा गया है, गॉड्स विजडम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय भ्राता मृत्युंजय भाई को आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने दिन रात एक करके आज का ये दिवस हम सबके लिए साकार किया। आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के, और साथ साथ आप देश विदेश की यात्रा करते अपने अनुभवों को ईश्वरी सेवा में लगाते हैं, माउंट आबू में आप निवास करते हैं और यहाँ के सेवाओं की गतिविधियों को आप देखते हैं। आपको आमंत्रित करती हूँ भ्राता मृत्युंजय भाई, जिन्हें लगभग 45 वर्ष हो गए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपना जीवन समर्पित किया है।
ॐ शांति, ॐ शांति, ॐ शांति। विश्व शांति स्थापक परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता श्री बाबा, उनके साकार माध्यम पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को आवाहन करते हुए आज का इस विशेष कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सफल यात्रा का 80th एनिवर्सरी वार्षिक उत्सव में समागम में समाये हुए हमारा अति प्रिय अति स्नेही अति सौजी दादाजी, हम सबका दादाजी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थापना से लेकर के अब तक सहयोगी बनकर के स्नेही बनकर के मार्गदर्शन करते हुए हमारा अनेक बार कार्यक्रमों में माउंट आबू में आए, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण कृष्ण की दुनिया स्थापन करने वाले आडवाणी जी को हम अपने तरफ से दादियों की तरफ से विश्व परिवार की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वर्तमान समय की मुख्य प्रशासिका 101 आयु में भी इतनी चैतन्य शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतनी खुशी में रहते दादी जी, हम सबको उत्साह भर करके आज की उत्सव का मूर्ति है परम आदरणीय दादी जानकी जी को मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस धरा पर भगवान से मिलाने का निमित्त, इस धरा पर धरती पर बाबा को हम सबका दर्शन कराने का, ज्ञान का उत्सव कराने का निमित्त आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी को हम जोर से ताली बजा करके स्वागत करते हैं। रत्नों की खजानी बांटने वाला हमारा रतन मोहिनी जी, छोटे आयु से लेकर के अब तक की ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों में जोड़ करके युवकों को, बच्चों को, बुड्ढों को, जवानों को आगे बढ़ाते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यहाँ तक ले आने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उसको भी जोर से स्वागत करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे भारत की हमारा विशेष अतिथि के रूप में इस सभा में उपस्थित आदरणीय श्री पीजे कोरियन जी, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इन्होंने समय प्रति समय ईश्वरीय सेवा में संलग्न रहते हैं, सहयोग करते हैं और प्रेरणा देते रहते हैं, आपको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा आदरणीय गुलाब चंद कोटारिया जी, हमारा राजस्थान का ही है, इज नॉट ओनली द गेस्ट बट इज द होस्ट, इस कार्यक्रम का होस्ट है, होस्ट के रूप में उपस्थित है, गेस्ट के रूप में भी उपस्थित है कोटारी जी, और पिछले दादी जी की सेंटिनरी सेलिब्रेशन में उपस्थित रहे और सभी अखबारों में इन्होंने रोज दादी जी की फोटो भी छपे और अनेक बाबा के संदेश भी छपे और आज भी छपते रहते और इतना ही नहीं हमारा बहनों को सहयोग देते रहते, आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ में हमारा राज्य की रेवेन्यू मिनिस्टर, मनी कनेक्टिंग, मनी मेकिंग, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, मनी 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 रेवेन्यू मिनिस्टर, लैंड एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू में ना रेवेन्यू है ना, वही रेवेन्यू मिनिस्टर साहब है, बहुत सहयोगी है, पिछले बार भी आप आए थे, आज भी आए हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में हमारा आदरणीय मुन्नी बहन भी उपस्थित है हम सबको प्रेरणा देने के लिए, इस कार्यक्रम के निश्चित करने के लिए डेट निश्चय करके इन्होंने दिया इस समय में आपको कार्यक्रम को, उसको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम सबका प्रेरणा स्रोत, हम सबका सदा आगे बढ़ाने में, विशेष करके मेरे जीवन में ट्रेनिंग देने में, शिक्षा देने में, वरदान देने में और आगे भी ले जाने के लिए निमित्त आदरणीय निर्वैर भाई जी उपस्थित है, उसको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम सबको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बहुत तीव्र गति से आगे ले जाने के लिए निमित्त बनी हुई है हमारा ब्रिजमोहन भाई, चाहे वीएपी हो चाहे कोई भी हो, देश के सभी प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गतिविधि में जोड़ करके सेवा के चार चांद लगाने वाले आदरणीय ब्रिजमोहन जी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा करुणा भाई जी सामने है। करुणा जी हर घर में घुस जाता है। कैसे घुस जाता है? पीस ऑफ माइंड, शांति का संदेश लेकर के, पीस ऑफ माइंड के माध्यम द्वारा हर घर घर में ईश्वरीय संदेश देने वाला संदेश पुत्र जो नारद के रूप में काम करते हैं, और नारद मुनि को भी तीनों लोकों में पूजा किया जाता है, ऐसे इनको सारी देश विदेशों में करुणा जी के नाम, करुणा कर के नाम से पूजा जाता है, ऐसे करुणा जी को भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा जयंती बहन को बाप दादा ने वरदान दिया, परिसा एंजल, एंजल ऑफ लाइट एंड माइट, इन्होंने लाइट भी है माइट भी है प्रेम भी है, ऐसा एंजल हमारे सामने उपस्थित है, आपको भी मैं बहुत 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 अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपकी दुनिया में बहुत सबसे बड़ी आकर्षण की हमारा मिसेस रीना टंडन जी है, एमिनेंट इंडियन फिल्म एक्ट्रेस प्रोड्यूसर एंड टीवी होस्ट है, मुंबई से आए हैं, जोर से उनको ताली बजा करके हार्दिक कर अभिनंदन करें, स्वागत करें इनको। और साथ साथ में हमारे अन्य लोग हैं, दीपक चौरासिया जी अभी कुछ समय में आने वाले हैं, संजय कुरश्रेष्ठ जी है, वैद्यनाथन जी है, रघु रामचंद्रन जी, भगवान सिंह जी है, और भी अन्य भाई बहने हैं इस समय में कुछ लोग उपस्थित है, उन सबको भी अपनी दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक मेरा लास्ट विषय मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ, उससे पहले भारत की कोने कोने में विदेश से आए हुए सभी भाई बहनों को, हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, परंतु आप सबको मैं करबद्ध से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मेरा एक लास्ट विषय संकल्प में है, आडवाणी भाई साहब हमारा दादाजी है, होम मिनिस्टर के रूप में आए, उसके पहले प्रतिपक्ष की विपक्ष की नेता के रूप में भी आए और अनेक बार आए, आज इस बार हमारे सामने है, अगले बार जब आएंगे तो भारत का राष्ट्रपति बनकर के आए, ये हमारा विषय है, ये हमारा संकल्प है, हमारा एक गुड विशेष है। आप सभी खड़े होकर के एक मिनट भाई साहब को हमारा हाथ हिला करके अभिवादन करें, ऐसे विश करें, आगे बार हमारे पास आए, केवल अगर तीन मास बाकी है, तीन मास के बाद में भाई साहब को हम राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा ही दादा नहीं है, सारी भारत के दादा है, बीजेपी का दादा है, विश्व की दादा है, ऐसी दादा को प्राप्त करके हम खुश हो रहे हैं, ऐसी है? जोरदार से ताली बजा करके, इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैन ऑफ कन्विक्शन, मैन ऑफ करेज, मैन ऑफ कॉन्फिडेंस, मैन ऑफ फेथ है, मैन ऑफ लीडरशिप है। इन्होंने दो मेंबर से इन्होंने भारत सरकार में बीजेपी सरकार को स्थापित किया, ऐसी नेता है, ऐसी शक्तिशाली आत्मा है, और भारत की सेवा करेंगे, विश्व की सेवा करेंगे, और विश्व में भारत का लाइट हाउस बनाएंगे, ऐसे विशेष व्यक्ति को हम विश करते हैं। ओम शांति, नमस्ते।
बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय भाई। और अब मैं आप सबके सम्मुख एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके जीवन में आर्ट ऑफ बैलेंसिंग है, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पिछले 60 वर्षों से जुड़े हुए हैं, अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, प्यूरिटी पत्रिका के चीफ एडिटर हैं, आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रज मोहन भाई, जिनके जीवन में हम पाते हैं निमित और निर्माणता का गुण, क्वालिटीज ऑफ हेड हार्ट एंड हैंड, तीनों की बैलेंसिंग। आप जितने ही रमणीक हैं उतने ही गंभीर भी हैं। मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने वक्तव्य को हम सबके सम्मुख रखें। आदरणीय भ्राता ब्रज मोहन भाई, आप हमारे मध्य दिल्ली से उपस्थित हुए हैं, ज्यादा समय आपका दिल्ली और माउंट आबू दोनों की बैलेंसिंग में ही आजकल रहता है आदरणीय भाई साहब। ये भी बताना चाहूंगी कि आप पॉलिटिशियन सर्विसेज विंग के चेयरपर्सन हैं और आपने अनेका अनेक लगभग 4 प्रेसिडेंट्स तो आप माउंट आबू लेकर के आए, प्राइम मिनिस्टर की विजिट कराई, अनेक अनेक मंत्रियों की विजिट कराई, ऐसी सर्विसेबल हस्ती को हम सुनेंगे।
ओम शांति। आज हमारा बाबा का ईश्वरी विश्वविद्यालय 80 वर्ष की लंबी यात्रा पूरी कर चुका है। जब हम ब्रह्मा बाबा के पास आए थे, हमारी 21 वर्ष की आयु थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रह्मा बाबा हमको मोल्ड करके इस प्रकार से इस अपनी सेवा में अपनी भुजा बना लेंगे। लेकिन ये सृष्टि नाटक का ड्रामा है और जितने भी भाई बहन यहाँ जानते हैं कि जरूर ही हमारा कुछ ऐसा पुण्य रहा होगा जिसके कारण से परमात्मा ने हम साधारण आत्माओं को चुना और इस सेवा में लगाया। बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। हमें ये सिखाया जाता था कि जो आए उसमें फायदा है, जो जाए उसमें घाटा है। पर जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया तो मैंने सीखा कि जो जाए उसमें फायदा है, जो आए उसमें घाटा है। और मुझे ये बात सही लगी, इसलिए मैं ब्रह्मा कुमार बन गया। हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत देवताओं का देश है। देवता का मतलब ही होता है देने वाला। और हम इनॉग्रेशन पर दिया जलाते हैं, दिए का भी अर्थ होता है कुछ दिया। तो उस देश के रहने वाले कितने महान देवी देवता थे, आज हम क्या बन गए हैं, कि आज कारण यही है कि हम देवता से लेवता की तरफ चले गए हैं। तो मैंने देखा अपने जीवन में, परमात्मा ने मुझे दिल्ली में पोस्ट कर दिया। तो आप जानते हैं दिल्ली तो हर प्रकार के भारत की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबकी राजधानी है। और इस कारण से मुझे मौका मिला कि परमात्मा के इस ज्ञान का मैसेज उन लोगों को दूं, और भगवान की शक्ति से यहाँ बहुत सारे हमारे नेतागण आते रहे। शायद लोगों को पता नहीं है, पहले हमसे पूछा करते थे कि ब्रह्मा कुमारी क्या करती है। वो समझते थे ये कोई धार्मिक संस्था है जो अपने ही उत्थान के लिए, जैसे दुनिया के लोग तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मनुष्यों को सिखाती है कि अच्छे रास्ते पर चलो। किसी को ये पता नहीं था कि इसका इतना विशाल कार्य है कि समाज के हर क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिकता लाती है। भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं, उन सब से कनेक्टेड ब्रह्मा कुमारी के विंग्स हैं। हमारे 21 विंग्स हैं जिसके अंतर्गत लगभग सारा समाज कवर हो जाता है, जिसमें राजनीतिक विंग, धार्मिक विंग, वैज्ञानिक विंग। ये विशेष मेंशन करने योग्य हैं क्योंकि धर्म सत्ता, राज सत्ता और विज्ञान सत्ता, ये तीनों सत्ताएं दुनिया में सबसे बड़ी सत्ताएं गिनी जाती हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त महिला विंग, महिलाएं जो कि विश्व की पॉपुलेशन का 50% है, और महिला को ही कहा जाता है जहां महिला का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं। तो हमारे बाबा ने इसीलिए महिलाओं को आगे रख के ऐसी संस्था बनाई जो महिला द्वारा ही संचालित है, वो ऐसा कार्य कर रही हैं जिसका यादगार भारत की नदियों के रूप में बाद में लोग गाते हैं। जितनी भारत की नदियां हैं उन सब के नाम आप देखेंगे देवियों के ऊपर हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि इत्यादि। तो किस चीज का यादगार है? देवी देवताओं की मूर्तियां जो मंदिर में है वो किस चीज का यादगार है कि हम भारतवासी कभी ये थे? हमारे सबके नाम भी आप देखेंगे देवी देवताओं पर है, लक्ष्मी नारायण होगा, किसी का श्री कृष्ण होगा, कोई शंकर जी भी होंगे, कोई तो साक्षात शिव का नाम भी रखे हुए होंगे, परंतु हम मानते हैं कि हम देवी देवताओं के वंशज हैं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में महिला विंग, फिर स्टूडेंट विंग, यूथ विंग, चिल्ड्रन विंग, सोशल सर्विस विंग, हेल्थ केयर, बिजनेस इत्यादि इत्यादि लगभग सभी क्षेत्रों में ब्रह्मा कुमारी सेवा कर रही है। कई समझते हैं कि शायद बड़े बड़े महानगरों में ही ब्रह्मा कुमारी के केंद्र हैं, लेकिन हमारे 80% केंद्र जो हैं वो छोटे शहरों में और गांवों तक भी गए हुए हैं। इसी प्रकार से कई समझते हैं कि शायद ये रिटायर्ड लोगों के लिए जो अपने जीवन जी चुके हैं, जिनके पास फालतू टाइम बचा उनके लिए है, लेकिन आपको हर्ष होगा 80% ब्रह्मा कुमारी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूथ हैं। उसके अतिरिक्त इस संस्था का जो एक्सपेंस है वो सारे विश्व में है। ये भी याद करने की बात है, अभी तो भारत सरकार ने 2 साल पहले भारत के योगा के नाम से यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्नाइज करा के भारत के योगा को प्रचलित किया है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ने भारत के योगा को 1972 से लेकर के हमारी बहनों को विदेश में भेजा, और सबसे पहले हमारी दादी जानकी जी जो वहां पर गई, तो आज तो उनको लोग माता जी कहते हैं, परंतु एक छोटे से लंदन में घर में रह करके इन्होंने सेवा शुरू की और आज विश्व के सभी महाद्वीपों में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर हैं और 70 देशों में ब्रह्मा कुमारी प्रेजेंट है और यूनाइटेड नेशंस में इसको बहुत ऊंचा कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में स्टेटस प्राप्त है। इस बात का प्रमाण है, नहीं तो लोग कहेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है। यूनाइटेड नेशंस भी रिकॉग्नाइज करता है कि ब्रह्मा कुमारी चाहे वो पॉवर्टी एलिविएशन हो, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल हो, चाहे वुमेन राइट्स हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां ब्रह्मा कुमारी ने सेवा नहीं की हो। तो अब 80 वर्ष पूरे हुए हैं, हम सब मिलकर के इतना हमारा बाबा ने बेस बना दिया है वर्ल्ड वाइड, अब बाकी के कार्य को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। कहा जाता है इट इज डिफिकल्ट टू टेक द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स, लेकिन अब तो हम 80 वर्ष की यात्रा कर चुके हैं और सारे ब्रह्मा कुमारी इसका एक गुण जो है जिसको हम पवित्रता कहते हैं, सब लोग हैरान है आखिर ब्रह्मा कुमारी में ऐसा कौन सा जादू है, तो वो जादू पवित्रता का जादू है जो आज दुनिया में नहीं है। भारत पावन देश था, पवित्र देश था, तो बाबा ने गृहस्थ में रहने वालों को, परिवार वालों को, छोटे बच्चों को, कन्याओं को, हर एक को ऐसी शक्ति दी है कि वो सारे पवित्र बन के भारत, सारे भारत को भी पवित्र बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं और ये सारे विश्व को भी प्रेरणा दे रहे हैं। आज हमारे मंच पर हमारी बहुत देर से इच्छा थी कि अडवाणी जी जो कि उस समय से संस्था को जानते हैं, 1937 से जब ये संस्था स्थापित हुई थी, हम तो दिल्ली में रहते हैं, आपने हमें हर वक्त हर समय खुला सहयोग दिया है, क्योंकि कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, जहां नेता आके एंडोर्स करते हैं तो लोग समझते हैं कि ज्ञान कुछ ठीक है। आजकल जैसे आप देखेंगे कमर्शियल एंडोर्समेंट होता है ना प्रोडक्ट्स का, परंतु ये एक सूक्ष्म ज्ञान है। तो आप जैसे नेताओं के कारण ही लोगों ने ब्रह्मा कुमारी में पहले झिझक झिझक के आते थे, फिर वो खुले दिल से आए, फिर उसको समझा, फिर उसको स्वीकार किया। इसी प्रकार से भ्राता कुरियन जी ये केरला के हैं, क्योंकि हमारी संस्था में आप देखेंगे, चाहे माउंट आबू में देख लें, कहीं भी देख लें, तो सारे भारत वर्ष के मिले हुए भाई बहन काम करते हैं। यहाँ कोई भाषा भेद नहीं है, रंग भेद नहीं है, प्रांत भेद नहीं है, कुछ भेद नहीं है, सारे विश्व में इसी प्रकार से चलती है। कारण क्या है कि हम एक परमपिता परमात्मा और उसकी संतान सब आत्माएं, इस प्रकार से फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैन, इसको मान करके चल रहे हैं। तो आप सब जो भाई बहन यहाँ आए हैं इस अवसर को खुशी मनाने, सबको सहयोग देने, ये एक अलौकिक तरह की खुशी है और हम सबको आगे बढ़ाने के लिए और भी हिम्मत देगी। तो मंच पर आसीन सभी का, हमारे पास बहन रवीना टंडन जी बैठी हैं, ये प्रसिद्ध एक्टर रही हैं, परंतु इनका भी सहयोग हमको मिल रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि इनके द्वारा, सिनेमा वालों के द्वारा बहुत पॉपुलर होती है कोई भी चीज। तो आप खुद यहाँ पर आई हैं, तो इसी प्रकार से हमारे पास अडवाणी जी की पुत्री प्रतिभा अडवाणी, वो भी इसी लाइन की हैं, हम उनके शो देखते रहे हैं, हम उनको कहते रहे आप आइए, लेकिन हर चीज का एक दिन होता है, एवरीथिंग हैज ए डे। तो आज वो शुभ दिन है जो आप भी पधारी हैं, बहुत से मीडिया वाले भी आए हुए हैं, इनके द्वारा अगर ये शुभ संदेश जाएगा कि वहां जाके देखो, तो और भी लोग इस ज्ञान का फायदा ले सकेंगे। ज्यादा ना समय लेते हुए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई सन, आपने स्पष्ट किया किस रीति से एक छोटा सा बीज जो एक परिवार में बोया गया आज इतना बृहद वट वृक्ष की तरह सारे विश्व में कोने कोने में फैल गया और उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आइए अब हम एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत ही व्यवहारिक है, सिंपल, हम्बल, वाइज, और जिनका नियंत्रण अपने ऊपर अच्छा खूब है, जिन्हें हम टेलीविजन के माध्यम से राज्यसभा को कंट्रोल करते देखते हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं, रिस्पेक्टेड ब्रदर पी जे कुरियन जी, डेप्टी चेयरमैन राज्यसभा, आप दिल्ली से विशेष रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। आपको हमने देखा है कि आप आध्यात्म प्रेमी हैं, हर अच्छी बात को मूल्य देते हैं, साथ ही साथ जब कल आपको ये पता लगा कि यहाँ पर भारत के सभी प्रांतों से भाई बहने आए हैं, आपको अति हर्ष हुआ कि ये एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक नमूना है जहाँ सब हिल मिल करके रह रहे हैं। आपने बहुत हर्ष व्यक्त किया आते सार यहाँ के एम्बियंस को, क्योंकि अच्छे व्यक्ति अच्छी चीज का अनुभव तुरंत कर पाते हैं। दादी जी से आपने शेयर किया। Now, I would like to invite respected brother P.J. Kurianji to kindly deliver your talk. आप संस्था की शिक्षाओं की भी बहुत आदर और सम्मान करते हैं। आइए।
रेस्पेक्टेड राजयोगिनी दादी जानकी जी, रेस्पेक्टेड राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी, ऑनरेबल श्री एल के अद्वानी जी, फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, other distinguished guests on the dais and off the dais, my brothers and sisters. पहले मेरे को मेरे हिंदी में बोलने की मुश्किल है, इसलिए आप माफ करूंगा। मैं अंग्रेजी में बोल सकता है, हिंदी में ठीक बोल नहीं सकते। I consider it a great honor and privilege to participate in the 8th anniversary celebrations of Brahma Kumaris. I am grateful to the Brahma Kumaris for the opportunity to address this august gathering at this momentous occasion. In fact, I am blessed by coming here and participating in this very important function. The organization Brahma Kumaris, known world over, is a philanthropic and spiritual organization which endeavors to promote the holistic development of human personality. Development of a society is not complete with just material or physical development, but the development of the soul, which is the real self, is the real development. Brahma Kumaris, which was established in 1937 by the great Dada Lekhraj, later known as Brahma Babaji, has now grown into a network of more than 8,700 centers in 110 countries spread all over the globe. It has become one of the most reputed international NGOs recognized by the UN with a consultative status. I take this opportunity to pay my tributes to the fond memories of Brahma Babaji, the founder of this great institution. It is the largest spiritual organization in the world, led by women. In these times of constant struggle to ensure women empowerment and gender equality, here is a vast organization managed largely by a team of dedicated yoginis and sisters who constantly strive to uplift us, the fellow beings, to individual freedom and spiritual salvation. Today, it is guided by the able leadership of Dadi Janaki Ji, who is a role model for all women and men who aspire to become leaders in their own right and seek to integrate their physical well-being into a state of eternal spiritual bliss. Dadi Janaki Ji, I bow my head before you and extend my greetings and best wishes on this occasion of the 8th anniversary of Brahma Kumaris. Brahma Kumaris, which is primarily committed to help individuals transform their perspective of the world from the material to the spiritual, are using the practice of yoga and meditation as had been used by our sages and rishis. It is only natural that an organization established in our country, a country with its abundant wisdom, cultural heritage and ancient history, should have turned to yoga and meditation as a tool to guide the modern man to be at peace with himself and with the world and the God. The health of a person is not just the well-being of the body alone, but equally or more the well-being of the soul and peace of mind. This holistic way of approach towards health has great relevance now when most of the people are leading a stressful life. Illness certainly has a correlation with the state of mind, and one's well-being is not just the well-being of one's physical body alone. Today, in a stressful society, it is most relevant. The system of healing
by the use of yoga and meditation adopted by Brahma Kumaris is worthy of emulation by all healthcare models. The King of Bhutan has said once that the real growth of a country is not to be measured by GDP, gross domestic product, but should be measured by GDH, the gross domestic happiness. Through yoga and meditation, the Brahma Kumaris are contributing to the GDH for the world. Yoga creates a harmony between the three human components, namely the body, the mind, and soul. It regularizes the functioning of all organs of the body and nullifies the ill effects of stress and unhealthy lifestyle. It also helps in maintaining one's health, knowledge, and inner peace, all at the same time. Providing good health fulfills one's physical needs, that is of the body. Knowledge fulfills one's psychological needs, that is of the mind. And the inner peace with oneself fulfills the spiritual needs, that is of the soul. In short, a regular yoga practitioner finds himself in harmony with the world and the nature. As a member of parliament, once in 2012, I had given a notice in the Rajya Sabha for a resolution to make yoga a subject of the curriculum in the schools. That was in 2012. But subsequently, I was elected to the post of Deputy Chairman Rajya Sabha. Therefore, I did not get an opportunity to move that resolution in the House. That is in the list of business there still. But I still believe, even now I believe, that yoga should be compulsorily made as a part of the curriculum of the schools and higher secondary schools in the country. That is for the holistic development of the personality of the student. Brahma Kumaris' emphasis on Raja Yoga meditation is to be specially mentioned. Raja Yoga meditation empowers the individual with a clear spiritual understanding of self and helps him in connecting with the supreme energy. Brahma Kumaris, while giving emphasis to this yogic way of life, helps people to lead an absolutely stress-free life. I understand this meditation allows one to enjoy the fullness of life, emancipated from all worldly clutches. Also, Brahma Kumaris focus on prevention of environmental degradation, which is one of the major challenges that we face today. The global warming and the consequential climate change are great challenges to be grappled with by the humanity. In this scenario, Brahma Kumaris' efforts in encouraging and promoting production of clean energy are to be greatly appreciated. I understand that Brahma Kumaris are implementing hybrid solar and wind energy systems with the cooperation of the Ministry of New and Renewable Energy. In these times of high air pollution, carbon emission, and the consequent climate change, such projects are of extreme importance for the sustenance of humanity. This morning, I had the opportunity to go and visit the solar power plant here in this place in Lipham. It's wonderful. I would say this affair of harnessing solar energy gives a great promise for our future, because our country is blessed with the sun energy. The sun god has favored us. And for future, the fossil fuel is not going to be there. In 15 years, it will be no more. And then it is our era that we have enough solar energy. And Brahma Kumaris have started harnessing that. My special congratulations for Brahma Kumaris for this far-reaching thing. In fact, Brahma Kumaris epitomize India's great culture and it symbolizes India's great civilization. They are the true ambassadors of the real Bharat world over. Today, in an era of extremism, violence and terrorism, the Brahma Kumari's message stands out like a beacon of light. Ancient India gave to the world the mantra, Ma Nishada. It was a loud message against violence and killing. And it is more relevant today than in those days. We also gave to the world the great adage, Vasudeva Kudumbakam. World is one family. Yes, in Brahma Kumari's, world is one family. Here, all are brothers and sisters, irrespective of caste, creed, religion, or place of origin. Brahma Kumari, therefore, by all their actions and programs, are radiating these great messages of Arsha Bharat to the modern world. My hearty congratulations to the entire team of Brahma Kumaris on this important milestone of its 80th birth anniversary and International Conference on God's Wisdom for World Transformation. My best wishes and greetings to the Brahma Kumaris for more success in their activities and endeavors, and also for continuing with their service to humanity with the same zeal and sincerity of purpose. In these troubled times, marked with hatred and violence all over the world, organizations like Brahma Kumaris stand out like a lighthouse and hope to the people. With these words, I conclude once again my congratulations and best wishes. Thank you. Jai Hind.
बहुत सुंदर जो आपने अनुभव किया उसे आपने व्यक्त किया और आशा है कि इसी प्रकार से आपका स्नेह और सहयोग सदा उपलब्ध होता रहेगा. नाउ वी हैव अमित सास सिस्टर रवीना टंडन. आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे संदेश मिला तो कार्यक्रम में परिवर्तन करते हुए मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि आप अपनी इंस्पिरेशनल गुड विशेस हम सबको देंगे. अभी कुछ दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें 155 कंट्रीज का सर्वे किया गया और उसमें इंडिया का स्थान 122 पर है. सोचिए तो सही कितना हम लोग सोने की चिड़िया, और कहां भारत का स्थान 155 देशों में 122 पर है. तो रवीना बेन, आप लोगों को खुश करते हो, रूहानी खुशी देने में भी अब आपको सहयोग देना है. आइए.
ओम शांति. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. मंच पर आए अतिथि जितने यहाँ मौजूद हैं उन सबको मेरा नमस्कार प्रणाम. अडवाणी जी जो दिल्ली से आए हैं, और मैंने सुना जब से ब्रह्म कुमारी का जन्म हुआ तब से वह आपके सहयोग में हैं. उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि ऐसी संस्था को सहयोग देके उनको बढ़ावा दिया, और चाहूंगी कि ऐसे ही लोग साथ जुड़ें. और जैसे कि दीदी कह रही थी पहले कि आज हमारा आपका ब्रह्म कुमारी आपका भी है, आप ही हैं जो इसे बनाते हैं, आप ही हैं जो इसकी एग्जिस्टेंस है. तो कहूंगी कि 80 साल आप सबको बधाई हो, हम सबको बधाई हो. ब्रह्मकुमारी न यंग है दीदी न ओल्ड है, मैं कहूंगी ब्रह्मकुमारी इटर्नल है, इमॉर्टल है और इमॉर्टल रहेगा। दादी जानकी जी का आशीर्वाद लेने यहां मैं जरूर आई हूं। आशा ये थी कि ज्यादा समय बिताऊंगी, कल से आई हूं और बहुत ही इम्प्रेस हुई हूं, खुश हुई हूं यहां आकर। एक जैसे मन की शांति मिल जाती है, भीड़ भाड़ को छोड़ के यहां आ जाओ तो एक जैसे एक शेल्टर हो जाता है, एक अपने आप में एक सिक्योरिटी मिल जाती है। बहुत ही अच्छा लगा आज सबके साथ भी समय बिताकर। मेरे ख्याल से जिस तरीके की सेवा ब्रह्म कुमारी इस पूरे विश्व में फैला रही है, एक ममता, एक प्यार, महिलाओं ने इस संस्था को अपना बहुत ही एक मजबूत सहयोग दिया है, इसलिए कहूंगी कि ममता भरी संस्था है ये, जहां ये विश्व को अपने आंचल में लेके उसे संवारती है, सुधारती है। और ऐसी संस्थाओं की बहुत जरूरत है आज के, हमारी जनरेशन भी जानती है कि जब हमारे आगे, अब मेरे दो बच्चे हैं, हमारे आगे बच्चे हैं, जो आगे का जनरेशन है, वो किस तरीके का एक डेंजरस वर्ल्ड में प्रवेश कर रहा है, जिस तरीके की पॉलिटिकल सिचुएशन आप दुनिया में देखेंगे तो कभी कभी डर लगता है कि हम अपने बच्चों को कैसी दुनिया में ला रहे हैं, उनको कैसी शिक्षा देंगे, कैसे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी रक्षा कैसे करेंगे। लेकिन वहीं पे फिर एक आशा उठती है, एक होप उठता है, एक फेथ बनता है कि हाँ, ब्रह्म कुमारी जैसे भी जगह हैं, संस्थाएं हैं जो प्यार, मोहब्बत, सेवा और ममता फैलाती हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत कुछ सुना आपने और बहुत कुछ लोग बोलेंगे, मैं इन सबके सामने बहुत छोटी हूं इसलिए बड़ी बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन बहुत अपने आप को इस समय ब्लेस्ड फील कर रही हूं, मुझे समय मिला बिताने का दादी जानकी जी के साथ। और मैं कहूंगी कि पहली बार जिंदगी में किसी ने मेरे आंखों में झांक के मेरे अंदर के सोल को देखा है, और जिस तरीके से मैंने उनका हाथ पकड़ के उनकी आंखों में झांका है, मुझे ऐसे लगा जैसे एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है, आज मेरे साथ वो हुआ है। मैं इसी फीलिंग को अपने साथ लेके जाऊंगी वापस, और कोशिश करूंगी कि हर बार जहां जहां मेरी जरूरत हो मैं अपना सहयोग दे पाऊं, मैं आप लोगों की मदद कर पाऊं, जितनी भी मेरी हैसियत है, छोटी सी हैसियत है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। आप सबसे प्रार्थना करती हूं मुझे इजाजत दें, थोड़ी जलती है, हाँ तबीयत, इसलिए एक्चुअली तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, मैं तो रीजुविनेट हो गई हूँ, री इंस्पायर हो गई हूँ यहाँ आके। लेकिन जरूर ये कहूंगी कि मेरी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हो रही है मात्र 21 अप्रैल को, और उसके प्रमोशंस में लगातार मैं सिटी टू सिटी टूर कर रही हूँ, तो न्यूयॉर्क से परसों ही आई हूँ और सीधे अहमदाबाद पहुंची हूँ, तो थोड़ा जेट लैग भी है, थोड़ा सब डामाडोल चल रहा है मामला, लेकिन जैसे कि मैंने कहा यहाँ आके एक अलग ही इंस्पिरेशन हो जाता है। तो इजाजत लूंगी मैं दादी जी से भी, अडवाणी जी से भी, कि मुझे इजाजत दें कि हाँ बिल्कुल आशीर्वाद लेके, आप लोग का भी आशीर्वाद और बेस्ट विशेस लेके मेरी फिल्म जो आ रही है मात्र 21 अप्रैल को, उसके प्रमोशंस के लिए भी मुझे अहमदाबाद जल्दी वापस भागना है, 2 बजे वहां पहुंचना था, मुझे पता नहीं कैसे पहुंचूंगी, लेकिन अगर जिनके साथ दादी जी हैं और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है, मैं सोचती हूं कि अपने आप ही कामयाब हो जाऊंगी। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर कहूंगी 80 वर्ष की सालगिरह पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, फिर मिलूंगी, ओम शांति।
कुछ कारणों वश कार्यक्रम में मैं परिवर्तन कर रही हूँ। रवीना जी को मेमेंटो देके सम्मानित करें, शिविका बेन साइटेशन पढ़ेंगी।
We greatly appreciate Ms. Ravina Tandon for your sincere and dedicated services in art and culture by promoting their true artistic spirit in our country, which is rich in culture and heritage. We sincerely acknowledge and felicitate you for your contributions for the development and progress of art, culture and traditional heritage of our people and country as a whole, which are quite relevant in giving India a distinct mark in cultural map of the world. Art and artistic qualities of the artist have made the life of human beings and even of gods and goddesses better, flavorous, beautiful, and thereby enhance the quality and value of their life. As a leading light in the field art and culture, you have also voluntarily offered a big hand in enhancing the quality of life. In national and international forums, you have promoted nation's art and culture in various countries at international level and thereby also brought enviable laurels, glories and greatness to the country. In matters of art and culture, you have achieved exquisite and artistic craftsmanship. Through your excellent works of art and culture, personal values, virtues, qualities and magnanimous contributions, you have added a lot to the artistic and cultural history of the nation and thereby greatly served, sustained and enhanced artistic and cultural interest not only of the people of our country but also of the world as well. We congratulate you and thank you for being here.
ओम शांति। कुछ कारणों से मैं कार्यक्रम में परिवर्तन कर रही हूँ और अब हम सब अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि अपने देश के एक सीनियर स्टेट्समैन हैं, आपका जीवन एक आदर्श उदाहरण है। जीवन में चारित्रिक मूल्यों को महत्व देना, अपने जीवन को बिल्कुल स्वच्छ, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट इस कलयुगी राजनीतिक दुनिया में रख पाना और साथ ही साथ जो राइट बात है उसका साथ देना, अडिग रहना, अचल रहना, यह आपका व्यक्तित्व है। हम सब जानते हैं, आप बताते हैं जब हम बहुत छोटे थे, जब आप बहुत छोटे थे और उस समय कराची में बाबा ने जब स्थापना की परिवार से, तब आप कभी कभी वहां विजिट किया करते थे और वो जो बीज आपके अंदर आध्यात्मिकता के, रूहानियत के पड़े, वो आज आपकी उस कन्विक्शन पर कि यदि संसार में अच्छाई आ सकती है, यदि बदलाव आ सकता है, तो आप प्रायः स्पिरिचुअल कोशंट बताया करते हैं। यदि परिवर्तन होगा तो स्पिरिचुअल कोशंट से होगा और इस चीज को आपने यदा कदा हम सबके सम्मुख रखा है। हम सब जानते हैं आप हमारे देश के बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व रखने वाले आदर्श मुहूर्त है। अधिक न कह के मैं आज आपसे नम्र निवेदन करूंगी आप अपने वक्तव्य को हम सबके सम्मुख रखें। 80 वर्षों की यात्रा को आपने यदा कदा देखा है। एक बार गांधी धाम में सिंधी कम्युनिटी की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी में सब कुछ था लेकिन बाबा का चित्र नहीं था। आपने उसी समय पॉइंट आउट किया कि अपने देश का एक महान पुरुष हुआ है दादा लेखराज, उनका चित्र वहां क्यों नहीं है, और वो चित्र उसके पश्चात रखा गया। आपको बहुत नाज है कि ये चीज जो सिंध से निकली आज हमारी दादियां उस प्रदेश की हैं जिन्होंने सारे देश और विदेश में नाम रोशन किया है। आइए अब हम सब सुनते हैं आदरणीय भ्राता लाल कृष्ण आडवाणी जी।
मंच पर विराजमान इस महान संस्था जिसके प्रमुख दादा लेखराज जी थे और जिन्होंने इस ओम मंडली नाम के संगठन को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया, और इस प्रकार से फैलाया कि लोग देखते देखते चकित हो गए। मैं कम से कम जब परिचय करवाता हूं इस संगठन का, बाकी अनेक जिन संगठनों में मैं काम करता हूं और करता रहा हूं, तो मैंने हमेशा कहा है कि भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन दुनिया भर में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका कार्य प्रमुखतः महिलाओं ने आरंभ किया और महिलाओं ने ही एक प्रकार से उसको इतना विस्तार दिया। इस संगठन की विशेषताएं कई हैं, मैं गिना सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को सर्वाधिक महत्व की मानता हूं कि दुनिया की कोई और संस्था नहीं है कि जिसकी नींव भी और जिसका विस्तार भी बहनों के कारण हुआ। और विशेषताएं तो ऐसी हैं कि मुझे याद है कि ये जब इतना बड़ा भवन बन रहा था उन दिनों में भी मुझे यहां आने का अवसर मिला था और मैंने देखा तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा कि हिंदुस्तान के किसी कोने में मैंने इतना बड़ा भवन नहीं देखा। और भवन ऐसा कि जिसको किसी स्तंभ की भी जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के किसी और भाग में मैंने 10,000 व्यक्तियों को समाने वाला इस प्रकार का भवन देखा हो कि जिसमें
पिलर कोई नहीं। लोग कभी कभी 200, 400, 500 का भवन बना करके कहते हैं कि इस 500 लोगों के भवन में पिलर कोई नहीं है, लेकिन ये तो 10,000 से भी अधिक लोग हैं इसमें समा सकते हैं, और वो 10,000 से अधिक लोग जिस भवन में समा सकते हैं और इतनी सुविधा के साथ बैठ सकते हैं और सारी कार्य का संचालन कर सकते हैं, उसमें एक भी पिलर न हो, मैंने तो कम से कम नहीं देखा। और ये एकमात्र विशेषता नहीं है, अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे मैंने पहली गिनाई कि पूरा का पूरा संगठन जो है उसको संचालित करने वाली बहनें, और उन्हीं के द्वारा चलता है शुरू से, आज नहीं शुरू से, मैंने जब से देखा है इस संगठन को। और जैसे ही बात गिनाई लोगों ने कि मेरा संबंध इसको इसके साथ शुरू से रहा है, भारत को आजाद हुए ठीक है 70 साल बाद भारत को आजादी मिली थी, और आज 80 साल हो गए, और इन 80 सालों में देखिए कितनी प्रगति हुई है, इसी एक संगठन की कितनी प्रगति हुई है। जितने लोग बैठे हैं यहां पर वे स्वयं देख सकते हैं, आश्चर्य होता है, अद्भुत लगता है कि 10,000 लोग इस व्यवस्था के साथ बैठे हो जैसे ये सब लोग बैठे हैं। मैं गिनती करवाना जाऊं तो आश्चर्य होगा लोगों को, लेकिन है मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि मैंने भी बचपन से एक ऐसे संगठन में काम किया है कि जिस संगठन को मैं बहुत आदर करता हूं, और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में जितने अच्छे संगठन बने हैं उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऐसा संगठन है, उस पर गर्व करता हूं मैं, क्योंकि मैंने उसी से संस्कार पाए हैं, उसी से शिक्षा पाई है, उसी से अनुशासन सीखा है, और इस संगठन को देख करके जो मैं देखता हूं मुझे लगता है कि इस संगठन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैं इस बात को स्वीकार करूंगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने देखा कि राज्यसभा के मेरे साथी और वहां के एक प्रमुख नेता वे भी आज जब मुझे यहां दिखाई दिए तो मेरे मन को बहुत संतोष हुआ, और मुझे लगा कि इस प्रकार से सब जितने लोग जो भारत को ऊंचा बनाना चाहते हैं और जो भारत के एक एक नागरिक में देशभक्ति की भावना फूंकना चाहते हैं और एक एक व्यक्ति में प्रामाणिकता, ईमानदारी, अनुशासन इस प्रकार के गुण कूट कूट करके भरना चाहते हैं, उन सबको अगर इस संगठन से सीखना होगा तो बहुत कुछ देश का भला होगा। बहुत बड़ी बात है। और कितनी व्यवस्था से, कितने अनुशासन से, कितने स्वत्व से, स्वाभिमान से सब लोग बैठे हैं और सारा कार्य देख रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, आनंद होता है। कितने लोग जानते होंगे कि इस संस्था की प्रमुख, उन्होंने अभी अभी कुछ ही दिन पहले लंदन में जाकर के और अपने 102 साल की अपनी आयु पूरी की। दादी जानकी अभी अभी उन्होंने 100 साल पूरे करके और लंदन में जाकर के वहां पर अपने जितने उनके अनुयायी थे, भक्त थे, उनसे मिलकर के उनको आशीर्वाद दिया, उनको ज्ञान दिया। कितने लोग और शिक्षा दी सबको। यहां आज हमारे बीच में है तो हमारे लिए गर्व की बात है, आनंद की बात है। ये उपलब्धि सहज नहीं होती, प्रभु की कृपा उन्हीं लोगों पर होती है कि जिनको प्रभु मानते हैं कि ये सचमुच विश्व के लिए, मानव समाज के लिए एक प्रकार की आदर्श महिला है, जिनको देख करके और अपने आचरण से वे बाकी सारी दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। मैं तो जब यहां आया तब देखा और देख करके मुझे बहुत आनंद हुआ, हर्ष हुआ। एक एक चीज में लगता था कि जैसे मानो के आदर्शवादिता हो। ये दीप, जैसे दीप यहां पर प्रज्वलित होते हैं चारों ओर, उनमें भी एक आदर्श सा दिखता है। छोटी मोटी बात नहीं दिखती, श्रेष्ठता दिखती है, उन्नति दिखती है। और ये तब हो सकता है जब इसकी आयोजन करने वाले लोग उनमें आदर्श हो। और ये यहां पर जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं उन सब में वो आदर्श दिखता है और लगता है कि हां, इसी प्रकार का संगठन है कि जो विश्व को मार्ग दिखा सकता है। ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये तो विश्व भर के लिए है कि इस प्रकार का आदर्श जीवन आप समाज में प्रेरित करें और उस आदर्श जीवन को देख करके सारी दुनिया वे भी उसका अनुसरण करें और हमारों को देख करके और सारे विश्व के लोग माने कि सचमुच भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें आदर्शवाद स्वाभाविक रूप से फूक फूक करके हर एक आदमी में फूका जाता है। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। और आज जब मंच पर से मेरा या मेरे साथियों का जो राज्यसभा से आए हैं या जो सालों से इसी संगठन में कार्य करते हैं तो उनकी प्रशंसा हो रही थी, तो मुझे लगता था कि ये मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरे देश की प्रशंसा हो रही है और जिस विश्व को जैसा हम बनाना चाहते हैं उसकी प्रशंसा हो रही है। मैं निवासी सिंध का हूं, कराची में मेरा जन्म हुआ और कराची में जन्म के बाद शुरू से लेकर के मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा पाई, उनसे अनुशासन सीखा, उनसे आदर्शवाद सीखा, उनसे ये सीखा कि जीवन में आचरण में कभी कोई बेईमानी नहीं आनी चाहिए, ईमानदारी से अपना आचरण बिताना चाहिए, कभी किसी के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए और कोई गलत काम करता है तो उसको कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मैं मानता हूं कि बचपन से लेकर के इन छोटी छोटी बातों को सीख करके ही मैं कुछ समाज के लिए कर पाया हूं और मैं चाहूंगा कि इस संगठन के द्वारा भी जो लोग देश सेवा करना चाहते हैं वे भी इसी प्रकार की ईमानदारी, इसी प्रकार की प्रामाणिकता, इसी प्रकार की पूजनीयता, इसी प्रकार की शुद्धता, सात्विकता अपने में धारण करके और उसके हिसाब से ही अपना सारा आचरण करें। कभी कोई समझौता मत करिए अपने स्वभाव से, कभी कोई उसमें त्रुटि मत आने दीजिए, कभी कोई ऐसी बात न सुने कोई कि अमुक चीज जो है वो इन्होंने नहीं की होगी, ये गलत काम नहीं कर सकते, ये व्यक्ति ऐसा है कि जो इस संगठन का व्यक्ति है, जो इस संस्था का व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करता है, गलत काम नहीं कर सकता। इस प्रकार की धारणा सब लोगों की बने, और मुझे विश्वास है कि जो संगठन इस प्रकार का काम कर सकता है तो वो कभी कोई गलत काम कहीं नहीं होने देगा। बहुत बड़ा आदर्श है हमारे सामने जो इस संगठन ने रखा है, और इसीलिए मैंने अगर किसी समय दादा लेखराज जी का उल्लेख किया था कि उनका चित्र क्यों नहीं है, तो इसी कारण, क्योंकि मैंने इस संगठन को देखा है, शुरू से लेकर के देखा है, और दादा लेखराज जी जिस प्रकार के आदर्श व्यक्ति थे उसी प्रकार का आदर्श संगठन उन्होंने बनाया है, जिसका उदाहरण आज सबके सामने है। मैं तो सोचता रहा कि ये कितनी संख्या होगी, कितने देशों से आई होगी, और मुझे बताया गया कि कितने देशों से आए,
137।
हाँ नहीं, यहाँ 170 देशों से है, लेकिन 133 देशों से लोग आए हैं, और किस प्रकार से आए, कोई प्रेरणा और कोई नहीं सिवाय अपने अंदर की, अंतर मन की जो प्रेरणा है उसी के आधार पर इस प्रकार का आदर्श कार्यक्रम हो सकता है। जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और मैं सबसे बड़ी बात जो मानता हूं उसका उल्लेख मैंने सबसे पहले किया कि इन दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई संगठन नहीं मिलेगा जो संगठन इस प्रकार का आदर्श संगठन बन करके दिखाए, केवल मात्र मुख्य रूप से महिलाओं के आधार पर, महिलाएं जिसका सारा संचालन करती हैं, बाकी पुरुष है संस्कृत शिक्षक नहीं, लेकिन वो पुरुष तो महिलाओं से सीखते हैं। जिस प्रकार से एक अच्छे परिवार में सबसे प्रमुख दायित्व किसी का होता है तो मां का होता है, उसी प्रकार से इस संगठन में, इस संस्था में अगर सबसे अधिक प्रमुख किसी का दायित्व है और प्रमुख किसी की भूमिका है तो वो माता जानकी जैसी महिला के उसकी उसकी उसका है, या हृदय मोहिनी, ऐसी जितनी सारी महिलाएं यहां पर मंच पर बैठी हुई हैं उन्हीं के संचालन से ये सारा संगठन चलता है और संगठन बढ़ता है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। मैं बार बार प्रणाम करूंगा मंच पर बैठी हुई मेरी बहनों को और इस सभा में उपस्थित बहनों को, और ये कहूंगा कि इन्हीं के सहारे आज यह संस्था ऐसी प्रगति कर सकी है और ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंच सकी है, और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे करके इसका असर केवल मात्र इस सभा में आए हुए लोगों पर नहीं होगा, लेकिन भारत भर में फैले हुए जितने लोग हैं जिनका संगठन से संबंध आता है और जो संगठन को देख पाते हैं उन सब पर होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको सबको प्रणाम करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि धीरे धीरे करके यह संस्था अपने आदर्श को भली भांति प्राप्त करेगी और दुनिया भर में भारत का नाम होगा, हम सबके कारण, आप सबके कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको प्रणाम करता हूं और मंच पर बैठे हुए बहनों को विशेषकर बार बार प्रणाम करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता लाल कृष्ण आडवाणी जी का। आप सबके मन के अंदर मात्र शक्ति के प्रति सद्भावना, सत्कार की भावना अवश्य जागृत हुई होगी। मां ही शक्ति अवतार कही गई, मातृ भूमि कहते हैं, कदापि पितृ भूमि नहीं। और जहां महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, वहां हमारा विश्वास है कुछ भी असंभव नहीं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना समय निकाल करके हम सबके मध्य आए। आप कहते हैं मैं कभी पार्लियामेंट मिस नहीं करता, मैं कैसे जाऊंगा। मैं कहा इस तरीके का कुछ प्रयोजन करेंगे तो आप एक दिन में जाके आए और आपने वो कर दिखाया। आइए अब हम सब दीप प्रज्वलन, बेनेडिक्टरी सेशन के दीप प्रज्वलन में भाग लेंगे। ये दीपक यहाँ जग रहे हैं और हम सबके मन में दीपक जगाएंगे। दिया जो कहा, दिया माना देने वाला। एक बार सब खड़े होकर भी इस सेरेमनी में भाग लेंगे।
ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ।
संकल्प लें हम भी दिया बन
धरती के अशांति का अंधकार मिटाओ,
दिया देने वाला।
यही आवाज हर दिल से निकली,
एक यही आवाज हर दिल से निकली।
वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। विश्व एक परिवार है,
विश्व एक परिवार है।
एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है।
वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली।
सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले।
सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले।
प्रेम एकता पवित्रता,
प्रेम एकता पवित्रता, सुख शांति का आधार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली।
अब मैं आमंत्रित करूंगी राजयोगिनी जयंती बहन। जयंती बहन जो कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से 60 वर्षों से जुड़ी हुई हैं और ब्रह्मा बाबा की बाल्यकाल से आपने पालना ली है, आप निमित्त बनी दादी जानकी को विदेश ले जाने के, और उसके पश्चात कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, दिनों दिन नए से नए केंद्र खुलते गए और आज 137 देशों में जो केंद्र है उसका इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस लंदन है और लंदन में आपका निवास है, हमारे मध्य है। आप मेडिटेशन भी कराएंगे और वक्तव्य भी देंगे। आदरणीय जयंती बेन,
ओम शांति। रिस्पेक्टेड दादाजी श्री आडवाणी जी, दादीज हु आर एट द मोमेंट जस्ट टेकिंग अ मोमेंट्स ब्रेक, रिस्पेक्टेड गेस्ट्स ऑन द डायस एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि आप सब इस सेलिब्रेशन में आकर के पहुंचे हैं और 80 वर्ष की यात्रा में मुझे ये भी बहुत हर्ष है कि बचपन से ही 60 वर्ष से मैं इस यूनिवर्सिटी का कार्य देखती रही हूं और 50 वर्षों से उसमें कुछ कुछ शामिल भी रही हूं और उसमें भी मैं ये देख रही हूं कि जो पहले मैंने बहुत छोटे रूप में देखा पुणे में, उसके बाद कैसे भारत में भी वृक्ष बढ़ता गया और जब पिताश्री जी ने मुझे ये आज्ञा दी कि तुम लंदन जाकर के वहां सेवा करें, परिवार के साथ में वहां ही रहती थी, तो वापस घर जाते समय बाबा ने कहा कि बाबा तुमको घर नहीं भेज रहे हैं परंतु सेवा स्थान पर भेज रहे हैं। ये 1969 की बात है। फिर उसके पश्चात तो दादियों का आना और विश्व की सेवा फैलना, वो कुछ कहानी तो आप लोगों ने सुन ली है और कुछ कुछ बातें ये भी आपने सुनी है कि इस संस्था का आधार किस प्रकार से है। और मैं ये कहेंगी कि सारे विश्व भर में जो सबसे बड़ी सौगात भारत से विश्व को मिली है वो है राजयोग। सारे विश्व में आज राजयोग का नाम फैला हुआ है। सभी योग शब्द को जानते हैं, कोई भी योग शब्द को ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में नहीं करते हैं परंतु योग को योग ही शब्द कहते हैं। क्यों? उसका कारण क्या? क्योंकि इस समय योग की बड़ी आवश्यकता होती। जिस समय कोई ऐसी दवाई होती जिसकी बहुत जरूरत है तो वो विश्व में बड़ी फास्ट फैल जाती है। तो आज के संसार की जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी दवाई है योग। तो इस कारण से आप सोचो कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी भी 40 वर्ष के अंदर बहुत फास्ट विश्व में फैल जाए कम ही सुना होगा। और स्पिरिचुअल संस्था जहां पर कोई फीस नहीं ली जाती है, जहां माताएं सारा संचालन करती है, इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में आप सोचो कि किस आधार पर इतना सारा फैलाव हुआ। दो बातों का कारण, एक तो योग की आवश्यकता है और जैसे जैसे लोगों को योग के प्रति पहचान होती गई, अभ्यास होता गया, उनको अनुभव होता रहा, उन्होंने अनेक औरों को बताया। कहते हैं कि सबसे फास्ट जो भी कुछ कार्य चलता है वर्ड ऑफ माउथ, 1 से 10 तक संदेश देना सहज हो जाता। आप ये सोचो कि आप एक दिन में कितने लोगों के साथ मुलाकात करते, आप एक सप्ताह में कितनों के साथ मिलते और एक मास में कितनों के साथ मिलते और जो आपके मन में कुछ प्राप्ति हुई होंगी आप अवश्य वही उनको बताते रहेंगे। तो कितने लोगों तक इतना जल्दी आवाज फैल जाए कि हाँ योगी तरीका है जिससे सब बीमारियों का हल हो सकता। तो इस तरीके से लोग अनुभव करते गए, फैलाते गए। और दूसरा कारण मैं ये भी कहेंगी कि जबकि सर्वशक्तिमान बाप से हमें सब प्रकार का हर एक बात प्राप्त हो सकती, तो जब मनुष्यों को प्राप्ति का अनुभव होने लगता, मनुष्य ये सोचते हैं कि मुझे जो प्राप्ति हुई है औरों को भी अवश्य होनी चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि सर्वशक्तिमान का कार्य है, बेशक कई आत्माएं उसमें निमित्त बनती है, उनके द्वारा कार्य चलता, परंतु कार्य मनुष्य का नहीं है, कार्य उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमपिता परमात्मा का है, जिस कारण से सारे विश्व भर में अभी हम देखते हैं कि किस तरह से एक विश्व परिवार बनता जा रहा। भारत का ये एक बहुत सुंदर शब्द आता है कि विश्व का परिवार अथवा विश्व भ्रातृत्व, परंतु रियलिटी में जब हम माउंट आबू में आते हैं तो ऐसे ही अनुभव होता। अभी थोड़े दिन पहले होली पर, आप सोचो कि होली तो भारत का त्योहार है, परंतु करीब 100 देश के लोग, करीब 2000 की संख्या में सब ने होली इकट्ठी मनाई। क्यों? क्योंकि उनको ये अनुभव है कि हम वास्तव में एक ही परिवार के हैं, एक परमपिता परमात्मा की संतान। भाई साहब दादाजी कह रहे थे कि सब प्रांत यहाँ मौजूद है, तो ये तो सही बात है, भारत के सब प्रांत इकट्ठा होकर के कार्य कर रहे हैं, परंतु जो भारत की पुरातन सभ्यता है, देवी देवता और धर्म के जो असूल है, जो उनका सभ्यता है, वो सारे विश्व में अभी फैल रहा है, और भारत के तरफ सबका ध्यान है कि भारत द्वारा ही विश्व को रोशनी प्राप्त होंगी। उसमें मैं 3 शब्द का वर्णन करेंगी खास, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, साइलेंस। क्यों? क्योंकि आजकल विश्व में बहुत डर है। जब जब समाचार कुछ सुनते हैं, कुछ थोड़े दिन पहले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ही कुछ ऐसे घटना घटी जिससे कुछ घबरावट हो गई लोगों को, और उस समय भी ये तो एक छोटी बात है, परंतु किस तरह से विश्व में लोग जैसे कि डर में आ गए हैं और सोच रहे हैं कि विश्व का भविष्य क्या है। तो ऐसे समय पर जो इंटरनल सिक्योरिटी की महसूसता होती, कैसे, जबकि हम परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के रखते, तो परमात्मा द्वारा जो हमें उस घड़ी सेफ्टी का अनुभव होता, उस घड़ी सिक्योरिटी का अनुभव होता, जो हम उस समय समझते हैं कि बिल्कुल जैसे कि एक छत्र छाया के नीचे हम चल रहे हैं, ये आज हर इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिन्होंने दोष किया, जिनके विक्टिम्स बने, हर एक के प्रति हमारे मन में वो शुभ भावना हो कि उनों का भी संबंध परमपिता परमात्मा के साथ ऐसा जुटे जो उनों के मन से भी हिंसक बातें निकल जाए और अनेक आत्माओं के मन से डर निकल जाए। तो योग द्वारा हमें बहुत सिक्योरिटी की महसूसता होती। विश्व भर में मैं कई बार अकेली ही जाती हूँ, मैं अकेली जाती ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अपनी दादी जानकी जी 85 ईयर्स तक कई बारी विश्व के अलग अलग स्थानों पर अकेली ट्रैवलिंग करती रही। फिर तो आयु अनुसार, समय अनुसार, आजकल तो तबीयत कुछ अलग ही है, परंतु आप सोचो कि विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश, विदाउट ए ह्यूमन कंपेनियन, दादी विश्व के कोने कोने पर जाती रही। मुझे याद आता कि अपना एक मेक्सिको का भाई बैठे हैं सामने, तो मेक्सिको में अर्थक्वेक हुआ था और उस समय दादी जी यूएसए में थी, तो दादी ने जैसे ही समाचार सुना, दादी ने न सिर्फ उन्हों को फोन करके आथित दी, दादी ने कहा मुझे जाना है, और उस समय किसी और के लिए संभव नहीं था कि दादी जी के साथ जाए, दादी अकेली मेक्सिको में जाकर के उन आत्माओं को आथित दी। वहां वो भाई बैठे हैं। तो इस तरह से जैसे आपको ये बताया गया कि जो माता की शक्ति है, परमपिता परमात्मा शिव शक्तियों द्वारा कार्य करते हैं, वो कार्य अभी चल ही रहा है। और आप प्रदर्शनी देखेंगे पीछे में और आप में आपको उसमें बहुत सारा डिटेल की बातें पता चलेंगी। परंतु सिक्योरिटी की महसूस का आज हर इंसान को आवश्यकता है। सेकंड, स्टेबिलिटी, अपनी ऐसे स्थिति बनाकर रखें, अचल अडोल स्थिति जिसमें कोई भी बाहर का वातावरण कुछ भी हो, हमारी स्थिति वो सत्यता अहिंसा प्रेम संपन्न बनी रहे। वो भी शक्ति आती है उसके साथ योग लगाने से। लोग कहेंगे हमें मन की शांति चाहिए और मैं कहेंगे सर्वशक्तिवान से शक्ति लेते जाएं तो उस शक्ति के आधार से अवश्य ही मन की शांति प्राप्त हो सकती। और तीसरी बात, साइलेंस। इन सब बातों का आधार जब हम अंतर्मुखी होकर के अंदर की यात्रा करते हैं, उस आंतरिक यात्रा द्वारा हम खुद को भी जान सकते और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगा सकते। जब तक हमने इंटरनल साइलेंस का अनुभव नहीं किया, हमें वो शक्ति का अनुभव भी नहीं हो पाता। इंटरनल साइलेंस का मतलब जो अपने मन के बहुत फास्ट विचार चलते हैं उनको स्पीड को हम थोड़ा रोक करके शांति से चलने दे, ठीक रास्ते पर लाए और उस आधार पर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के उस द्वारा जो सर्व प्राप्ति है हम खींच लेवे। मैं जानती हूँ कि घड़ी तेज भागती है और मैं ये चाहेंगी कि न सिर्फ आप शब्दों का कुछ अनुभव करें, परंतु जैसे कईयों ने बताया कि उन्होंने दादियों के द्वारा कैसे दृष्टि द्वारा भी बहुत अच्छा अनुभव किया, इसी तरह से आप अभी कुछ चंद घड़ियों के लिए एकाग्र होकर बैठेंगे और हम एक आंतरिक यात्रा करेंगे ताकि हमारा मन परमात्मा में लगे। मन मनाभव परमात्मा की ये आज्ञा हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी मिली है। तो जब हमारा मन परमात्मा में टिक जाता, उस आधार से हमें सच्ची शांति, सच्ची शक्ति, प्रेम, सत्यता अपने जीवन में धारण संभव है। अब मैं अपने मन के संकल्प बताती जाएंगी और मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ इस यात्रा में शामिल रहे। शरीर को शांति से बैठने देते, परंतु उससे ज्यादा मन को ध्यान देते कि मेरा मन इधर उधर न जाए, परंतु पहले तो अपने स्वधर्म शांति के धर्म में स्थित रहे। मैं कौन हूं? मैं हूं आत्मा, ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु, ब्रिकुटी के बीच चमकता हुआ तारा। मैं आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान, परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्मय बिंदु, कल्याणकारी शिव। शिव परम पिता परमात्मा द्वारा शांति के सागर की, शांति की लहरें हम सब तक पहुंचती जा रही। शांति न केवल हम आत्माओं तक पहुंचती, सागर की लहरें दूर दूर सारे विश्व भर की आत्माओं तक भी पहुंचती जा रही। हर एक के मन में यही आशा है कि हमें शांति प्राप्त हो। सागर के द्वारा शांति की लहरें फैलती जा रही। विश्व में शांति स्थापन करने वाला एक वो ही माता पिता है। हर आत्मा को शांति का दान देने वाला वही सागर। शांति के साथ साथ प्रेम का सागर। परमात्मा आत्मा को प्रेम देकर जागृत करते, सोई हुई आत्मा को फिर से जागृत करके प्रेम की शक्ति भर के सब दुख मिटाकर ऐसी शक्ति भरते जिससे सत्यता की राह पर चलना संभव हो जाता। सत्यम कल्याणकारी शिवम सुंदरम। शिव बाबा आत्माओं को नई जीवन देते, संसार को नया बनाते। हम आत्माएं उस बाप की याद के द्वारा मिल करके अवश्य ही परमात्मा के विश्व में शांति स्थापन करने के कार्य में सहयोगी रहेंगे। ओम शांति।
जिस प्रकार जयंती बहन ने अभ्यास कराया, ऐसा अभ्यास हम यदा कदा अपने जीवन में करते रहें, प्रतिदिन इसे हम इंट्रोड्यूस करें तो जीवन में शांति सामंजस्य इसका अनुभव कर सकेंगे। हमारे मध्य हमारे अति स्नेही अतिथि भ्राता कुरियन जी छुट्टी ले रहे हैं।